सीधे कौशल्या जी के महल में आए। कौशल्या जी के महल में आए, अब कौशल्या जी तो सुबह पहले हवन वगैरह तो पूरा कर लिया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया और एकाग्र मन से भगवान विष्णु का ध्यान किया। देखो ध्यान करने की इतनी अच्छी विधि बताते हैं। अपन ध्यान करते हैं ना, तो अपन ध्यान करते हैं कि भगवान विष्णु का ये रूप है, भगवान कृष्ण का या भगवान राम का या शिव का, जो भी रूप, यूं ध्यान करते हैं। अच्छी बात है। ऐसा भी आता है नाक से सवा फुट की दूरी हो, सवा फुट की दूरी हो, ये सवा फुट है, सवा फुट की दूरी यहां इस चीज में, और ऐसे भगवान का स्वरूप देखना चाहिए, ऐसा आता है। पर ये हमारे भगवान शंकर और ही रूप बता रहे हैं इनका राम। जो जिस स्वरूप का ध्यान करते हो आप, उसको अपने हृदय में बैठा हुआ देखिए। और जब कभी अपने ध्येय का श्री विग्रह सामने दिखे, तो ये देखना चाहिए कि ऐसे भगवान मेरे यहां है जो इस रूप में यहां दिखाई दे रहे हैं, मेरे अंदर विराजमान है वो। अब कहेंगे अंदर तो ये शरीर है, कोथड़ा है, नहीं, नहीं, भाव राज्य में, हमारे मन में। एक आदमी ने कहा कि भगवान गीता में कहते हैं कि सबके हृदय में रहता हूं, तो यहां इतने बड़े हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, क्या सब डॉक्टरों को भगवान दिखते हैं क्या? मूर्ख कही गए, समझते नहीं। अरे स्थूल शरीर में, हमारे अंदर भगवान है, वो तो स्थूल शरीर के अंदर देखते हैं। भगवान हमारे भाव राज्य में रहते हैं, भाव राज्य है वो, उसको ही बोलते हैं हृदय में रहने की बात, भाव राज्य में। ये तो भगवान कण कण में ही है, अब इसमें ही भगवान है, इसको तोड़ोगे मरोड़ोगे तो कहां भगवान है? अरे आपने समझा है भगवान और ढंग का, इसमें भगवान है और ढंग के। भगवान भगवान के भी तो ढंग, एक रूप थोड़ा ही है भगवान का। अब कहेंगे साहब इसमें चतुर्भुज रूप कहां है? अब चतुर्भुज रूप है किसी भक्त को कहेंगे, वो तो यही बैठ के इसमें भगवान का चतुर्भुज का दर्शन करेगा, यह साहब चतुर्भुज रूप है, वो आंखों से थोड़े ही दिखता है, वो भाव से दिखता है। और निर्गुण निराकार सच्चिदानंद रूप है, वो इसमें है ही, वो भी भगवान का रूप है। एक रूप से भगवान का रूप समझ लिया हमने कि भगवान तो बस ये चतुर्भुज रूप है, ऐसे जैसे मनुष्य होते हैं ऐसे ही होते हैं, बस इसके अलावा नहीं होते, ऐसे नहीं होते भगवान। अस्तु, तो कौशल्या जी ने जो ध्यान किया था वो क्या था? अंतस्थम एकम, अंतस्थम, अपने अंदर ही भगवान विराजमान है। तो सामने चित्र वगैरह हो तो ये सोचो हमारे हृदय के भगवान की ये फोटो इस कैमरे से यहां आई है, ये जैसे अभी हम यहां बैठे हैं, ये कैमरा है, ये फोटो ले लेते हैं, फोटो ले देख ले, हाँ ये हमारी फोटो है साहब, ये देखो ये फोटो है, ओहो। लेकिन भगवान को देखते ही सोचना चाहिए कि हमारे हृदय की फोटो, हमारे हृदय में ऐसे भगवान विराजमान है, ऐसे हृदय में विराजमान है। तो कौशल्या जी ने अंतस्थ भगवान विष्णु का ध्यान किया और ऐसे ध्यान में मग्न हो गई कि पास में आए हुए राम का भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। तब सुमित्रा जी ने महारानी से निवेदन किया, महारानी जी, महारानी जी, रामोयम समुपस्थित है, राम आ गए आपके पास है, राम आ गए। राम नाम सुनते ही केकई के अंदर आनंद ही आनंद, एकदम दृष्टि बाहर की, आए बेटा आओ 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 बेटा, ऐसा आलिंगन किया उसका, रे बेटा आओ, भुंक्ष पुत्र कुछ खाओ, मिष्टम अन्नम, थोड़ा मीठा खाओ, क्या है मातृता आई है, हो ये मातृपना आया है, आओ भाव राम, तात मधुर कछु खाओ। गोस्वामी जी मना लेंगे, तात मधुर कछु खाओ, कुछ मीठा खा लो। यहां भी कहते हैं कि भुंक्ष पुत्रेति च प्राह मिष्टम अन्नम सुधार देते, भूख लगी होगी ना, कुछ खाओ। राम जी ने कहा कि महाभोजन करने का तो वक्त ही नहीं है। क्यों? क्या नहीं हुआ? बस मुझे दंडकारण्य में जाना है, जल्दी करो। क्यों? क्योंकि समय मेरा निश्चित हो गया है, दंडकारण्य में जाना है। क्या बात हो गई? कोई अयोध्या पर चढ़ाई हो रही है कि नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा है, अयोध्या सब कुशल मंगल है। तो फिर बस ऐसी छोटी सी बात है, तो कोई बात तो होगी ना। वही केकी ने कोई दो वरदान सुरक्षित रख रखे थे, दो वरदानों में भरत के लिए तो राज्य है और मेरे लिए ऋषि मुनि का वेश बनाकर 14 वर्ष तक वनवास में रहना है। चिंता क्या करती हूँ भाई, अभी सभी 14 वर्ष यही निकल जाएंगे, तो मैं तुमसे प्रणाम करने के लिए आया। अरे तू, अरे वो चक्कर खा गया। अरे माँ ये क्या हुआ? अरे माँ तुम तो बेहोश हो गई छोटी सी बात के लिए। मारे अरे माँ बोलो तो सही। फिर माँ कह रही, बेटा इस अयोध्या में हमारी तो कोई स्थिति नहीं है, पिताजी ने वरदान दे दिया, दूसरी रानी ने हमारे बेटे को वनवास निकाल दिया, तो हमसे भी कोई पूछा नहीं, कोई सलाह नहीं, ये क्या बात हो रही है? अयोध्या में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि राम वनम सत्यम, ठीक है जब मेरा यहां कोई अस्तित्व नहीं है तो राम तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी, मुझे भी साथ में ले चलो, तुम्हारे बिना तो मैं यहां रह ही नहीं सकती, आधे क्षण भी नहीं रह सकती। जैसे बछड़े को कोई ले जाए कहीं तो गाय की क्या दशा होती है, ऐसी मेरी दशा हो रही है। ना ना, मैं अपने प्राण प्रिय पुत्र को अपने से अलग देख ही नहीं सकती बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भरत को राज्य दे हो, ये कैकेयी को राज्य के लिए कुछ भी करना चाहिए, लेकिन कैकेयी को तुम्हारे लिए तो कोई वरदान मांगना ही नहीं चाहिए था ना, उसको अधिकार ही नहीं है। ये उसको अधिकार इतना ही है कि भरत के लिए राज मांगे, और पिताजी को दशरथ जी महाराज को भी भरत को राज्य देवे उनका अधिकार है। मेरे पुत्र को दंडकारण्य में भेजने का कैकेयी को और महाराज दशरथ को कोई अधिकार नहीं है। कैकेय्या वरदो राजा, यदि राजा कैकेयी का वरदान देते हैं तो अपना धन दो, दौलत दो, सब दो, राज्य दो, तुम्हारा क्या अपराध तुमको वन में निकाल दिया? यदि कहो कि पिता है वो आदेश देते हैं तो पिता से तो भाई माता का स्थान 100 गुना ज्यादा होता है। माँ की आज्ञा और पिता की आज्ञा, तो माँ की आज्ञा माननी चाहिए। पित्राज्ञप्तो वनम गन्तुम, यदि तुम्हारे पिता वन में जाने के लिए मना करते हैं तो हम कहते हैं हम तुमको मना करते हैं, हमारे वाक्य का उल्लंघन करके जाओगे तो ठीक है जाओ, हम तुम्हारे सामने जहर पी के अपना प्राण त्याग देंगे। अब लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। मां आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, मैं इतनी देर तक चुप था, केकी के सामने अभी मैं कुछ बोला नहीं, पिता के सामने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरे मन की बातें कोई नहीं बोल रहे थे वहां, मैं छोटा हूं, बोलता हुआ अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज मेरे मन की बात आप बोल रहे हो, मेरे मन की बात बोल रहे हो आप। माता जी आपकी तरफ से मैं बात करता हूं राम जी से। हे राम, जो केके के वशवर्ती है, जो उन्मत्त है, जो स्त्री में आसक्त है, ऐसे राजा को तो जेल खाने में डालकर नहीं, उसको तो बद्वा निहन्मि भरतम, ऐसे को तो जो है जेल खाने में डाल देना चाहिए, और मैं भरत को मारूंगा, भरत के भाई बंधुओं को मारूंगा, कौन आता है यहां राज्य लेने के लिए, ये लक्ष्मण अकेला पर्याप्त है, सबको मैं जो है अपने शौर्य से, पराक्रम से और क्रोधाग्नि से भस्म कर दूंगा, मेरे सामने कोई धनुष लेकर के टिक नहीं सकता है। राम आपका अभिषेक हम करते हैं, कौन है दो सिर वाला जो मेरे सामने खड़ा होगा? मैं जिस समय धनुष बाण लेके खड़ा हो जाऊं मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। बस हो गई बात लक्ष्मण, तो हमारी बात तो इतनी ही है, ये कोई कम बात है हमारी? कितना आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप कोई बोलने वाला नहीं है, हम ये सब देखते रहेंगे, बस हो गई बात, मेरी बात सुनो। हे रघुकुल के शौर्य, ये निश्चित है कि तुम्हारे समान यहां कोई बलवान नहीं है, तुम जो कुछ बोल रहे हो सब मैं जानता हूं, लेकिन हर चीज का एक उचित समय होता है। लक्ष्मण, ये क्रोध का समय है क्या? ये क्रोध का समय नहीं है, ये संयम का समय है। जीवन की हर परिस्थितियों का क्रोध से मुकाबला नहीं होता है लक्ष्मण, विवेक से काम लो। क्या पिता जीवन भर मिलेंगे? क्या मां जीवन भर रहेगी? क्या ये राज्य अक्षुण्ण है? ये राज्य, ये परिस्थितियां सदा रहेंगी? कभी इनके साथ अपना वियोग नहीं होगा? ये भोग तो आकाश में बदलों के समान हवा से आते हैं और उड़ जाते हैं, काल की हवा से कभी मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं। इनके बीच में मनुष्य की स्वयं की स्थिति कहां है, ये देखनी चाहिए। अरे संसार के भोग पदार्थ तो तपे हुए लोहे के ऊपर पानी की बूंद जितनी देर ठहरती है उतनी देर ये संसार ठहरता है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। लक्ष्मण, क्या छोटे से राज्य के लिए, क्या इन भोगों के लिए, क्या सुख सुविधा और आराम के लिए, क्या अयोध्या के राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने लोगों को मां बाप की बात का उल्लंघन करना चाहिए? करोति दुखे न, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है लक्ष्मण, मनुष्य सारी उम्र में इस शरीर को आराम देने के लिए तरह तरह के भोग पदार्थ इकट्ठे करता है, शरीर को सुख मिले सुख मिले सुख मिले, लेकिन वो ये विचार नहीं करता है कि शरीर के सुख से पहले आपको कितना दुख उठाना पड़ रहा है। और आत्मा का आपका संबंध है, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, इसलिए आप शरीर से लाखों कोसों दूर हो, फिर भी आदमी शरीर को ही सब कुछ मानता है। अरे पिता को तुम चाहे जैसे ही बोल रहे हो, ये माता पिता भाई बंधु भौजाई स्त्री पुत्री कुटुंब का मेला है, ये मेला तो वास्तव में प्याऊ पर आदमी आता है, उतनी देर का आपस का संगम है, आपस का मेल मिलाप है। यात्रा के समान जैसे यात्री लोग आपस में मिलते हैं थोड़ी देर के लिए फिर बिछुड़ जाते हैं, ऐसा संगम है। छाए व लक्ष्मी चपला प्रतीता, इस संसार में तीन चीजें सबसे ज्यादा सुख देने वाली होती है, एक तो लक्ष्मी, धन। तो धन तो भाई छाया के समान है, कभी वृक्ष की छाया को देख लो, मकान की छाया को देख लो, एक जैसी एक जगह रहती है, छाया यूं होते होते यूं बदलती है, छाया बदलती है। दूसरा जवानी, तो जवानी कैसी होती है? तारण्यम अम्बुर अम्बुरमिवद, जल समुद्र के ऊपर लहर आती है, ऐसे समुद्र पर लहर आती है, आती है दिखती है, ये लहर है थोड़ी देर में ये लो खत्म हो गई, ऐसी जवानी है साहब, जवानी है जवानी है जवानी है जवानी है, जवानी खत्म। काले बाल थे धोले बाल हो गए, सब अपने अपने अवस्थाओं में हो गए। तो तारुण्य भी ऐसा ही है। और तीसरा है स्त्री आदि का सुख, ये सब स्वप्न के समान झूठा है, स्वप्न लगता है कि सच्चा है, जगने अरे सब झूठा है। तो स्वप्नोपमम स्त्री सुखम आयुर अल्पम, फिर भी तथापि जंतोर अभिमान ऐसा, ये मैं हूं साहब, मेरे पास लक्ष्मी है, मैं जवान हूं। देखो चार चीजें हैं, चार चीजें है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, एक एक मप्य अनर्थ आये, एक एक चीज बड़ी अनर्थ करने वाली। एक तो धन, एक यौवन जवानी, और एक प्रभुता, प्रभुता माने कोई पद आदि अधिकार मिल जाए वो, और एक मूर्खता। इन चार चीजों से बड़ा अनर्थ होता है, एक भी चीज मिल जाए, चारों मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। मनुष्य रोज सूर्य को उदित होता हुआ देखता है, अस्त होता हुआ देखता है, सूर्य उदित हो गया, आज ये अस्त हो गया, आज अमुक दिन आ गया, आज पोषवदी दूज आ गई, आज ये हो गया, आज ये हो गया। अरे तुम राजी होते हो? तुम्हारे प्रत्येक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक तुम्हारे जीने की आयु खत्म हो रही है। प्रतिक्षणम क्षरत्ये तद आयु आम्ब घटाम्बवत, जैसे कच्चे घड़े में पानी डालो पानी कैसे बहता है, ऐसे आयु का समय, जीने का समय तो बहता जा रहा है और शरीर के अंदर बीमारियां शत्रु के समान मौका ताक ताक करके आक्रमण कर रही है, फिर भी ये संसार का सुख मिले हमको। देहम आस्था, इस शरीर को लेकर के लोग क्या क्या करते हैं। अरे लक्ष्मण, तुमने कहा कि मैं सबको भस्म कर दूंगा, क्यों? राम को राजा बनाने के लिए ना। राम से पहले कोई राजा नहीं हुआ, राम के बाद कोई राजा नहीं रहेगा यहां। अरे राज्य वगैरह तो अपनी जगह पड़े, अपने लोग चल देंगे यहां से। इसलिए इस बात को समझो लक्ष्मण, समझो। देहाभिमानी न सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती ही, जितने दोष है वो सब देहाभिमान से पैदा होते हैं। लक्ष्मण सदा विचार करो कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सज्जनों ये बात इतनी इतनी कीमती है, यदि हम समझे तब तो। परंतु जैसे कोई अज्ञानी आदमी जानता नहीं, करोड़ रुपए का हीरा है, वो हीरा यूं ही हाथ में लिए फिरता है। अरे भैया इस हीरे को छिपाओ, गुप्त रखो, पता मत चलने दो, ऊपर फटे पुराने कपड़े पहनो और ऐसे रहोगे जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, छिपा के रखो इस हीरे को। आदमी बाजार जाएगा और 5-7-10 करोड़ का हीरा होगा, ऐसा मंगता सा बना हुआ जाएगा, वो कार में बैठ के नहीं जाएगा, वो धनवान होके नहीं जाएगा, एकदम पुअरनेस, बहुत उसमें गरीबी दिखाता हुआ जाएगा, वो ऐसा गरीब बना हुआ। ऐसे जो वास्तव में परमात्मा की तरफ चलने वाले पुरुष होते हैं, वो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, वो ऐसे हीरे मोती है, उन हीरे मोती की तरफ विचार करना चाहिए। ना हम देह, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान है ज्ञान। और मैं शरीर हूं ये सबसे बड़ी मूर्खता, इससे नीची कोई मूर्खता नहीं, और मैं शरीर नहीं हूं इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तस्माद यत्न सदा कार्य, इसलिए मनुष्य को सदा ही इस विचार में रहना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर हूं ये मान गए, फिर काम क्रोध लोभ आदि ये सब पैदा हो जाएंगे। लक्ष्मण इतना क्रोध करते हो, क्रोध नहीं करना चाहिए लक्ष्मण। किसी भी शत्रु से, किसी भी बुरे आदमी से हमारी इतनी बुराई नहीं होती है जितनी बुराई अपने अंदर उठने वाले क्रोध से होती है। देखो अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने भी बताया है, अपने ऋषि मुनि तो बोलते ही थे, और डॉक्टर लोग कहेंगे, लोग उसको ज्यादा मानेंगे। डॉक्टरों ने बताया कि क्रोध आता है उस समय जो शरीर में एक गर्मी आती है, उस समय में जो है रक्त के अंदर जो हमारी जीवनी शक्ति के कीटाणु होते हैं वो बहुत ज्यादा मरते हैं, बहुत ज्यादा जीवनी शक्ति के कीटाणु मरते हैं। कीटाणु मरे तो दोनों ही मरने चाहिए, पर क्रोध से जीवनी शक्ति के कीटाणु बहुत ज्यादा मरते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान आ रहा, हम दूसरे के ऊपर क्रोध करें, क्या कर लेंगे क्रोध करके भाई, क्या फायदा? कि साहब उस समय विवेक वो रहता नहीं है, विवेक नहीं रहता है तो भाई उसके लिए एक काम करना चाहिए कि अपने से छोटा भी हो तो उससे माफी मांग लो, बेटे से तो फिर भी नहीं, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति और आयु में भी छोटा हो तो भाई हमारे क्रोध आ गया, क्षमा मांगते हैं। एक समय भोजन मत करो, आत्मदंड दो। आत्मदंड देने से जितना जल्दी मनुष्य का सुधार होता है उतना किसी भी उपाय से नहीं होता। खुद को खुद दंड दे, अपने अंदर देखो, कोई कहे अब क्या बताए, इन्होंने गलती की इसलिए हमको क्रोध आया, ये गलत है। दूसरे के अपराध से हमें क्यों क्रोध आया? हमें क्रोध आया इसका मतलब हमारी गलती है। महाराज जी के पास दो आदमी गए, आंखें देखी बात है, गोविंद भवन की बात है, आपस में कोई बातचीत होते होते एक आदमी बहुत क्रोध करने लग गया, कहा मेरा कोई कसूर ही नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं ऐसा, खूब क्रोध किया। महाराज जी ने कहा देख भाई, किसी मामले में तुम्हारा कसूर है कि नहीं है तो भगवान जाने, तुम जानो, आपस की बात है, क्रोध तुमने किया है तो कसूर तुम्हारा है। तुम्हारा यदि कोई कसूर नहीं है तो क्रोध क्यों आया? तो जो क्रोध करता है वो बेकसूर होता हुआ भी सबसे बड़ा कसूरदार हो जाता है। क्रोध क्यों आया? भगवान कहते हैं कि क्रोध है एव अलम मोक्ष विघ्नाय सर्वदा। मोक्ष के ऊपर यदि हमें विघ्न डालना हो, कल्याण में यदि विघ्न डालना हो, तो क्रोध एक बहुत बड़ा शस्त्र है। इससे कल्याण का मार्ग एकदम बंद हो जाता है, कल्याण का तो नाश ही हो जाता है। विचार नहीं करते लक्ष्मण, क्रोध मूल है मनस्ताप है, मन के अंदर संताप पैदा होता है, संसार में बंधन होता है, धर्म का नाश होता है। क्रोध जितना हमारे शत्रु है उतना कोई शत्रु नहीं है लक्ष्मण। क्रोध है क्रोध है एष महान शत्रु। और तृष्णा, तृष्णा वैतरणी नदी, तृष्णा है ये वैतरणी नदी है। और संतोषो नंदन वनम, संतोष है वो नंदन वन है। और शांति रे वही काम दुख, और शांति है ये कल्प वृक्ष है, सारी कामनाओं को देने वाली है। शांति है तो बताओ उसको क्या चाहिए? जिसके मन में शांति है उसको क्या चाहिए बताओ? जिसके मन में कि साहब को रुपये चाहिए, धन चाहिए, पर इसका मतलब वो शांति नहीं है। कुछ न कुछ चाहिए है, तब तक शांति में आदमी रह ही नहीं सकता है। शांति रेव काम दुख, इसलिए शांति रखो, क्रोध शांति रखो लक्ष्मण, क्रोध को बिल्कुल पास में मत आने दो। तुम सोचो तो सही, ये आत्मा कितनी शांति में रहता है। ये आत्मा शरीर आदि के साथ मिल करके अपने को भुला देता है, और वास्तव में आत्मा तो आत्मा ही है, अपने अपना स्वरूप है आत्मा। उधर विचार करो ना, एक करोड़पति आदमी का लड़का यदि मंगतों के बीच में बैठ करके भिखारी बना हुआ बैठा हुआ हो और मांगता हो, टुकड़े मांगता हो, और वो करोड़पति का मां बाप यदि वहां से निकले, कितनी तकलीफ होती है उनको, रोने लग जाए, मां रोने लग जाए, पिता रोने लग जाए, देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार के बेटा है आत्मदृष्टि से, और संसार के तुच्छ भोगों के हाव है, मांग रहे हैं, मांगते बने रहे बैठे हैं, कितना दुख होता है भगवान को। इसलिए लक्ष्मण आत्मा शुद्ध है, स्वयं ज्योति रविकारी निराकृति ही, इसलिए देह इंद्रिया प्राण ये तुम नहीं हो। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसके पास कभी भी दुख नहीं आते हैं। बुद्ध्यादिव्यो बहि सर्वम अनुवर्तस्व माखिदय, बाहर का व्यवहार केवल बाहर तक सीमित रखो, उसको अंदर मत आने दो। कह दो कि हाँ अयोध्या हमारी है, राज्य हमारा है, ये पिता हमारे हैं, माता हमारी, सब बाहर का व्यवहार है। बाहर के व्यवहार के बोलो, अंदर तक इस व्यवहार को आने ही मत दो, अंदर सावधान रहो। प्रवाह पतितम कार्यम कुर्वन अपि न लिप्यते, बाहर के व्यवहार से जो समय पर आपने कोई काम कर दिया उसमें आपका कोई दोष नहीं है, बस इतना ही ठीक है। और मां, आपने हमको कहा कि हम प्राण त्याग देंगे, आपने कहा कि हमें साथ में ले चलिए। मैया थोड़ा हृदय में जब भगवान का ध्यान करती हो ना, तो इतना सा भी भगवान का विधान आप सहन नहीं कर सकती क्या? भगवान की सच्ची आराधना तो भगवान के विधान को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है, यही भगवान का भगवान की भक्ति है, हृदय भाव है। आज यदि बिछड़न हो रहा है तो कभी मिलन भी होगा, यदि मिलन होगा तो बिछड़न होगा, बिछड़न होगा तो मिलन होगा। ये मिलना बिछड़ना सदा ही चलता है। इसलिए न तो कोई आदमी सदा सुखी रह सकता है मां, और न कोई सदा आदमी दुखी ही रह सकता है। तुम इस बात को यदि विचार में कर लोगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि न सदा एकत्र संवास है, यहां सबका एक समान एक रूप में रहना कभी नहीं होगा। देखो सज्जनों, परिवार में हम साथ में रहते हो, ये रोज विचार करना चाहिए कि ये दिन नहीं मिलेगा, ऐसा सदा ऐसा साहचर्य नहीं रह पाएगा। चलते चलते कोई इनके से खटका बोल ही जाएगा, उस समय बुरी तरह से रोएंगे, ऐसा आप सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, भाई मर जाएगा, पिता मर जाएंगे, मेरी मां चली जाएगी, मेरी दादी चली जाएगी, ये तो पहले से ही सोचने की बात है। महाराज जी कहा करते थे कि भाई पिता मर गए इस बात का दुख नहीं, हम जानते नहीं थे कि पिताजी मर जाएंगे, मर गए इस बात का दुख है, तो भाई जानते नहीं थे तो ये अपनी गलती है, मरने वाले की गलती तो है नहीं, क्योंकि मरने वाला तो बेचारा सृष्टि का कायदा निभा रहा है, वो तो मरा है, हम जानते नहीं थे ऐसा हो जाएगा, तो गलती तो अपनी है, अपनी गलती भोगनी पड़ेगी। भगवान भी कहते हैं कि यथा प्रवाह पतित प्लावानाम सरितां तथा, क्या है भाई प्रवाह में जल बहता है मिलता है, कितनों के साथ मिलता है जुलता है, 14 बरस जाते कौन सा समय क्षणार्धम भी, इसलिए आप आग्रह मत कीजिए और जो हो रहा है उसमें आप दृष्टा बन के रहिए, और दृष्टा बन करके भी नहीं उसको उसको वास्तव में प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए, जो हो रहा है उसको भगवान का प्रसाद मानिए। माता के चरणों में प्रणाम किया, माता की आंखों में प्रेम साफ है, एक बेटा तेरी बात का मेरे मन पर बड़ा असर पड़ा है, मैं ऐसा हट नहीं करूंगी, जाओ बेटा तुम्हारे वन के अंदर देवता रक्षा करेंगे, गंधर्व रक्षा करेंगे, भगवान विष्णु रक्षा करेंगे, ब्रह्मा रक्षा करें, तेरी सब प्रकार से रक्षा हो बेटा, और मैं तुम्हारे इस वनवास के काम में कोई बाधा नहीं डालू, बड़े प्रेम से जाओ। लक्ष्मण जी ने भी भगवान के चरण पकड़ लिए, कहने लगे महाराज मेरे अंदर का संशय आपने दूर कर दिया, मैं आपके साथ रहूंगा, इतना बढ़िया ज्ञान दिया आपने, ये यदि मैं साधना करता तो इतना जल्दी क्रोध दूर नहीं हो सकता था, लेकिन सत्संग के वचनों से मेरे हृदय पर बहुत असर पड़ा है, इसलिए प्रभु मैं आपके साथ ही जाऊंगा, आपके साथ ही वन में रहूंगा, मुझे आप साथ में ले चलिए प्रभु, नहीं तो मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे, ऐसे भाई को छोड़ कैसे सकता हूं, मेरा हृदय बदल दिया आपने, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। अच्छी बात है लक्ष्मण, जाओ चले अपने साथ चलते हैं। अब जो है वहां से सीता जी के वहां गए महल में, सीता जी ने कहा महाराज आपका तो अभिषेक हुआ होगा ना, अभिषेक होने के बाद तो आप अयोध्या के राजकुमार माने भावी राजा हैं, भावी राजा की घोषणा के बाद तो आपके पास चारों तरफ हाथी घोड़ों की सुरक्षा की एक टोली रहती है, आपके पास सेना रहती है, सेना नहीं है, अकेले कैसे आए, आपके पास कोई छड़ीदार नहीं, कोई आसन रखने वाला नहीं, कोई सम्मान की सूचक कोई आपके पास में कोई ऐसी दृश्यावली नहीं, क्या बात है, छत्ता वगैरह कोई नहीं है, मुकुट भी नहीं है, न कोई आपके सामने कोई रणसिंगा बजा रहे हैं, रणसिंगा होता है यू 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 लपेटा खाया हुआ यू, न वो कोई बजा रहा है, सामंतराज सहित है संभ्रमात आगतो सिखी, मन एकदम कैसे आ गए, पहले कई बार जय जयकार होती है, महाराज आदिराज दशरथ जी महाराज के युवराज, अयोध्या के युवराज महाराज राम पधार रहे हैं, ऐसी आवाजें आनी चाहिए थी, ऐसी घर में घुस गए थे, साधारण आदमी आता है क्या बात है। राम जी मुस्कुरा रहे सीते तुम्हारी बात तो राजोचित है, राजाओं के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए, राजाओं के लिए होना चाहिए तो मैं राजाओं की तो बात करता हूं, आप राजा नहीं तो क्या है, नहीं 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 हम ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि कहां से आए, अरे हमको ऋषि मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करना है सीते, क्यों आपको दंडकारण्य में जाना है, वहां ऋषि मुनियों के बीच में रहना है, देखो सीते ऋषि मुनियों के बीच में रहने पर बड़ा ज्ञान मिलता है, और जब तक आदमी वन में नहीं रहेगा तब तक राजा को जो है राजा को भी ज्ञान क्या होगा, इसलिए हमारी तो होने वाले राज्य के लिए पहले वन में भेजकर हमको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई देखो वन में कैसे रहना होता है, राजा को तो सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए देखो हम वन में जाएंगे और पिताजी ने आज्ञा दी है इसलिए जा रहे हैं, और आज ही जाना है, इसलिए हम तो देखो ऋषि मुनि के वहां जा रहे हैं और आपको देखो यहां कौशल्या जी की सेवा में रहना चाहिए, क्योंकि बहु रानी के लिए सासू की सेवा से बढ़कर संसार में किसी की भी सेवा नहीं है। सुश्रुषाम कुरु मे मातुर न मिथ्यावादिनो वयम, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए हमने तुमको यहां ऐसे ही सासू के पास रहने के लिए कहा है। तो महाराज जी बात क्या है, ये बात हो रही थी, क्या बात है? कुछ नहीं है। किमर्थम वनराज्यम, बताओ तो सही, क्यों आपको वन में भेजा जा रहा है? कोई अपराध हो गया क्या? नहीं नहीं, अपराध अपराध की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कैकी के कोई दो वरदान थे, दो वरदानों में एक वरदान से उन्होंने मेरा राज्य भरत को दिया है, कितनी अच्छी बात हो गई, और दूसरे वरदान में दंडकारण्य में हमको ऋषि मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करना है, और राजा ने देखो सत्यवादी होकर मेरे प्रति इतना प्रेम होकर के भी कैसे छाती को कठोर रखा, उन्होंने दो वरदान दे ही दिए हैं, इसलिए मैं तो बड़ी शीघ्रता से जा रहा हूं। अब देखो सीते, मेरे पास जरा समय नहीं है बातचीत करने का, मेरे कार्य में विघ्न मत डालो। सीता जी ने कहा कि अच्छा, आप ही वन में जाना जाते हैं, आप ही वन में जाना जानते हैं क्या? मैं नहीं जानती, अहम अग्रे गमिष्यामि, मैं आपके पीछे आई हूं और वन में आपके आगे जाऊंगी। विवाह में तो आपके पीछे आई हूं, घर में आपके पीछे आई हूं, लेकिन वन में आपसे आगे जाऊंगी। अहम अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात त्वम, बाद में आप जाओगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं मेरे बिना तो आप वन में जा ही नहीं सकते, और आपके जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, आपका वनवास मेरे बिना अधूरा है महाराज। अरे सुनो सुनो भाई, कैसी बात करती हो, उस वन में जाओगी जहां सिंह हरदम दहाड़ते रहते हैं, हाथी चिंगाड़ते रहते हैं, घोर रूप से राक्षस जहां मनुष्यों का भोजन करते रहते हैं, खट्टे मीठे जहां पर फल पदार्थ खाने को मिलते हैं, उस वन में जाओगी? अरे भाई देखो, वहां पर कोई मार्ग भी नहीं है, ऊंचा और खूबड़ मार्ग है, कांटे हैं, कंकर है, पत्थर है, कहां तुम जाओगी? वर्षा आएगी तो कहीं कहां डरावनी गुफाओं में जाओगी जहां सांप बैठे हुए मिलेंगे, उल्लुओं की हरदम वाणी सुनने को मिलेगी, क्या करोगी वन में जाकर के? और पैदल चलना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सब सहन करना पड़ेगा, और राक्षस आदि है ये वन के अंदर देख करके और जो है डरावना रूप धारण करके तुम्हारे पास आएंगे, तुम तो उसी समय मर जाओगी, इसलिए तुमको तो यही रहना चाहिए। सीता जी ने कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं ना, आप वनवास में क्यों जा रहे हैं कि आपने अपने पिता के वचन का पालन करना धर्म समझा है? आप संसार में एक भी ऐसा धर्म का कार्य बता दीजिए कि जो धर्म पत्नी के बिना किया जाता हो। यदि आप यज्ञ करेंगे तो मेरे बिना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो फिर आप धर्म का काम करने जा रहे हैं तो हम धर्म पत्नी नाम है, धर्म के अंदर हमारा सहयोग है, हम आपके साथ रहेंगे, आप ही धर्म करेंगे, हमारा धर्म नहीं है क्या? स्त्री का यह धर्म नहीं है कि पति को यदि वन में जाने की आज्ञा हुई तो स्त्री आप महलों का सुख भोगेगी, उसका धर्म है पति के साथ वो भी तपस्या करे। त्वद अनन्याम अदोषाम माम, मैं तो आपसे अलग रह ही नहीं सकती हूं, और आप धर्मज्ञ हो, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, फिर आप मुझे यहां क्यों छोड़ के जा रहे हो? ये फल फूल कंदमूल फल केवल आपके लिए लिखे हैं, मेरे लिए नहीं लिखे हैं क्या? हम नहीं खा सकते क्या? आपको ये पता है कि नहीं, आप जब फल फूल खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊंगी, वो मेरे लिए क्या होगा? वो अमृत होगा, अमृत। देखो हमारे भारतीय संस्कृति का एक नियम है जो माताएं बहने प्राय, आजकल तो शायद पता नहीं कम हो गया, अपने पति के भोजन से पहले भोजन नहीं करती थी, पहले पति भोजन करे उसके बाद भोजन करे, और उसके बाद बचा हुआ भोजन करती थी तो वो अमृत होता था, इसलिए पुरुष ज्यादा बीमार होते थे, माताएं बहने इतनी बीमार नहीं होती, क्योंकि वो यज्ञ शेष होता है, यज्ञ शेष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ शेष भोजन करने के बाद घर में भी बड़े बूढ़े होते थे, वो बच्चों को सबको भोजन करावे, उसके बाद बच्ची गुजी माताएं ठंडी बासी खिचड़ी पिचड़ी के लेके लेके कोई बात नहीं, क्या बात है हमारी पेट भर जाएगा, उस वो उनसे जो है उनका शरीर निरोग रहता था। इसलिए भाई सीता जी ने कहा कि त्वद अवशिष्टम, आपसे जो अवशिष्ट भोजन होगा तदेव अमृत तुल्यम है, वो मेरे लिए अमृत तुल्य होगा। आपके साथ चलूंगी तो जो आपने कहा ना कि वहां पर कीले हैं, वहां पर कांटे हैं, कंकर हैं, पत्थर, वो मेरे लिए फूल का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका चरण होगा, मैं आपके चरणों को देखूंगी वहां, आपके चरण तो फूल जैसे कोमल है ना, ऐसे चरणों को देखूंगी मैं। आपकी दृष्टि तो कंकर पर जाएगी, मेरी दृष्टि तो फूल पर ही तो गई, इसलिए मेरे लिए कोई क्लेश नहीं है। और महाराज मैं छोटी बच्ची थी, अपने पीहर में थी, वहां पर मुझे एक एक जो है तपस्विनी मिली, वो तपस्विनी बहुत शास्त्रों की बात जानती थी। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा तेरा हाथ दिखाओ, तो मैंने अपना हाथ दिखाया, हाथ दिखाया, मेरे छोटे छोटे हाथों की रेखाओं को देखकर उसने कहा कि अरे बेटा तुझे तो जीवन में वनवास तो बहुत देखना पड़ेगा, तो प्राते विपिने वास है, और विपिन में रहना पड़े, जंगल में रहना पड़ेगा, और पत्या से और पति के साथ रहोगी। तो मैं उसी वक्त से सोचने लगी कि ओहो पति के साथ मैं एक राजकुमारी, कहीं जाऊंगी तो रानी बनूंगी, फिर पति के साथ लंबे समय तक वन में रहूंगी, ऐसा कैसे कह रही। पर मैं बच्ची थी, जानती नहीं थी, अब मैं जान गई। सत्यवादी द्विजो भूयात, तो देखो उसने जो हमारा हाथ दे करके कहा उसकी भी वाणी सत्य होनी चाहिए। और मैंने बचपन में रामायण सुनी है, किसी भी रामायण में ऐसा नहीं आया है कि राम अकेले ही वन में गए हो, सीता उनके साथ नहीं गई हो। रामायणानी बहुशः श्रुतानी, बहुत सुनी, लेकिन सीता बिना वनम राजमो गतः इतना कुत्रचित वद है, सीता के बिना यदि राम गए ऐसा कहीं नहीं आता है, एक भी रामायण बता दो आप। इसलिए मैं तो जाऊंगी, आप चाहे नाराज हो चाहे राजी हो, और यदि आप मुझे छोड़ जाओगे तो मैं, आप तो उधर वन में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, समय लगेगा, मेरे तो प्राण आपके सामने खत्म हो जाए, अपने आप ही प्राण खत्म हो जाएंगे, मेरे तो प्राण में रहेंगे ही नहीं। अच्छी बात है भाई, फिर तुम भी चलो, तुम भी चलो। राम जी क्या करें, राम जी को तो लीला करनी है, सीता जी को छोड़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है तुम भी चलो। अरुंधति आदि को खूब अच्छे आभूषण वगैरह दे दो, ब्राह्मणों को दान पुण्य करो। कहते हैं यहाँ पर दान पुण्य की क्या जरूरत थी, यहाँ पर दान पुण्य ये कि ये बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं राम जी, यहाँ सृष्टि का बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो वो दान पुण्य करते ही है, तभी उस अनुष्ठान में पवित्रता आती। तब उन्होंने अरुंधति को खूब से जो है आभूषण वगैरह प्रदान किए, इधर ब्राह्मणों को भी खूब धन वगैरह दिया, और सेवकों को भी खूब साथ धन दे करके, और राम जी महाराज वहां लक्ष्मण जी के साथ जो है आए। लक्ष्मण जी इधर सुमित्रा जी के पास गए, सुमित्रा जी के पास गए और सुमित्रा को कह दिया कि देखो माता जी आप तो हरदम कौशल्या जी के पास रहना, कौशल्या जी को दे दिया। राम सीता लक्ष्मणश्च जगमु सर्वेन्द्र पालयम्। अब जो है सबके सब राजा दशरथ जी के महल में आए, राम लक्ष्मण और सीता, ये जब अपने महल से निकले, आगे तो राम जी है, पीछे लक्ष्मण, पीछे सीता जी है, पीछे लक्ष्मण जी है। जब चल रहे थे अपने महल से पैदल पैदल, दशरथ जी का महल, देखो इनका महल एक जगह नहीं होता था, एक का महल यहाँ है तो एक का महल यहाँ है, एक का महल यहाँ है, ऐसे। तो अपने महल से दशरथ जी महाराज के महल में आ रहे थे, तो पैदल ही आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, जितने अयोध्या वासी वहां थे झर झर देखने लग गए, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, और आपस में वे सब बात करते हैं, कहते हैं सब कि देखो ये दशरथ जी भी कैसे हैं जी, इनको आज ही सत्य की बात याद आई क्या, इनको वरदान देना था तो उसी समय दे दुआ के नक्की करते हैं। किसी ने कहा देखो ये कोई पता थोड़ी चलता है कि कौन किस समय क्या हो जाता है, ये तो सब प्रारब्ध का खेल है। काय का प्रारब्ध का खेल है, एक स्त्री की प्रसन्नता में सारी अयोध्या की प्रसन्नता छीन ली गई। राजा भी कैसे है ये अपने स्वार्थ के लिए और अपने लिए कुछ भी कर लेते हैं, प्रजा का ध्यान भी नहीं रखते हैं। कैकेयी वा कथम दुष्टा रामम सत्यम प्रियंकरम, और कैकेयी का भी दिमाग खराब हो गया, राम के लिए वनवास मांगा। यदि उसको ये मन में आती वनवास की तो यही कहती कि साहब अपने वनवास में चले, अपनी उम्र आ गई, राम को राजगद्दी दे दो, भरत को राजगद्दी दे दो और अपने सब वन में चले जाओ, तब भी कोई बात नहीं थी। या यहां जितने अयोध्या के अंदर कोई दुष्ट होंगे, कोई पापी होंगे, उनको भेज देते। ये कैसी कैसी केके की बुद्धि हुई। चलो भाई यदि राम यहां अयोध्या में नहीं रहते हैं तो अपने अयोध्या में रहकर क्या करेंगे, अपने चलो बहुत रह लिए यहां, ऐसे अयोध्या में रहने से कोई लाभ नहीं है। अब देखो वो जो राम है पैदल आ रहे हैं, उनके साथ देखो सीता जी जिनको देवता लोग भी देख नहीं सकते थे, वो सीता आज अयोध्या के सड़कों के ऊपर पैदल पैदल आ रही है। और राम जी जो हाथी घोड़ों और रथों पर बैठने वाले थे वो पैदल पैदल आ रहे हैं। ओहो, त्रिलोकी में ऐसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है। राम जी की इस अवस्था को देखकर भी कैकेयी का हृदय पिघलता नहीं है, क्या बात है। तीसरा पुरुष बोलता है अरे कैकेयी मनुष्य हो तब ना, कैकेयी तो राक्षसी है, कैकेयी राक्षसी, राक्षसी कैकेयी नामनी जाता सर्व विनाशिनी, ये तो विनाश के लिए आई अयोध्या में, ये कैसे आ गई। अरे क्या बताए, ये इसी को तो भाग्य बोलते हैं, भाग्य के सामने किसी का जोर चलता है। हम अयोध्या वासियों का भाग्य बहुत अच्छा था, पर सबसे सबसे बुरा भाग्य तो ये आया केकी जैसी यहां रानी आई। इसलिए भाई भाग्य से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा शक्तिशाली भाग्य होता है। पुम प्रयत्नो ही दुर्लभ है, मनुष्य का प्रयत्न तो यहां चल ही नहीं सकता है। ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे थे तो वहीं पर ऋषि वामदेव जी बैठे हुए थे। वामदेव जी ने कहा अरे अरे ओ इधर आओ, क्या बातें करते हो, क्यों तुम केकी को गालियां निकालते हो, क्यों तुम किसी को दोष देते हो, महाराज दशरथ को तुम दोष देते हो, महारानी अरे केकी को तुम दोष देते हो, क्या आपको पता नहीं। अरे हमको आज पता है क्या, हमको बहुत कुछ पता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो तुमको तुमने राम को क्या समझा है, ये राम जी तो दशरथ जी के बेटा है। ना 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 ना, दशरथ जी के बेटा तो अभी है, पहले की बात तो देखो क्या, ये राम है, ये साक्षात भगवान विष्णु है, ये नारायण है, और सीता है तो केवल जनक की बेटी नहीं है, ये इनकी लक्ष्मी है, इनका अनादि संयोग है, इनका कभी वियोग हो ही नहीं सकता है। और देखा ना ये लक्ष्मण कैसा है, ये भी तो इनका छोटा भाई ना, ये शेषनाग है, लक्ष्मण शेषनाग है, इसलिए शेष के ऊपर विष्णु और विष्णु के चरणों में लक्ष्मी, इनका कभी भी वियोग नहीं होता। तो फिर गुरुदेव ये भरत और शत्रुघ्न कौन है, भरत और शत्रुघ्न शंख और चक्र है, ये कभी छिपते हैं कभी प्रकट होते हैं, कभी छिपते हैं कभी प्रकट होते हैं, इसलिए ये छिपे रहते हैं कभी प्रकट होते हैं, इसलिए इन तीनों का साहचर्य होगा, लक्ष्मण जी का, राम जी का, सीता जी का, इनका तो साहचर्य है, लेकिन भरत और शत्रुघ्न ये कभी कभी तो मिलेंगे कभी अलग रहेंगे। और यही 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 राम, यही राम जब सत्वगुण से जुड़ता है तो विष्णु कहलाता है, रजोगुण से जुड़ता है तो ब्रह्मा कहलाता है, तमोगुण से जुड़ता है तो यही शिव कहलाता है। शिव ब्रह्मा और विष्णु ये स्वयं ही है। एक आदमी वही पैंट पहन लेता है, वही आदमी पजामा पहन लेता है, वही आदमी धोती पहन लेता है, वही आदमी, आदमी भी क्या फर्क पड़ता है, वेशभूषा में फर्क पड़ा। ऐसे ही ये कवि ब्रह्मा बनते हैं रजोगुण के साथ, जन विश्व को पैदा करते हैं, सत्वगुण के साथ मिलते हैं तो विष्णु बन करके सबका पालन करते हैं, रुद्र बनते हैं तब सबका संहार करते हैं, प्रलय मचाते हैं, क्योंकि नाश करना भी बहुत जरूरी है। और यही भगवान मछली बन करके संसार की रक्षा करते हैं। जरे समुद्र मंथन हुआ तो तुमने देखा ना, एक कछुआ बने थे, हाँ ये कछुआ यही बने थे, और इस पृथ्वी का उद्धार सूकर बनकर के इन्हीं राम ने किया था, और नृसिंह बनकर के दुष्ट हिरण कश्यप का इन्होंने ही विनाश किया था, और प्रहलाद की रक्षा की थी, त्रिलोकी के अंदर कंटक बना हुआ था हिरण कश्यप, उससे जो है त्रिलोकी को मुक्ति दिलाई। और अदिति के यहां वामन भी यही बने, परशुराम जी भी यही है, और वही राम है, ये तो इनका काम है, यही बार बार आना जाना, लीला करना, और आपको और हमको सबको आनंदित करना, ये काम है। तो यहां क्यों आए गुरुदेव, यहां अयोध्या में आने का क्या मतलब है? अरे देखो, अयोध्या में इसलिए आए कि अयोध्यापति महाराज दशरथ पूर्व जन्म में कश्यप जी थे, कौशल्या जी अदिति जी थी, इन्होंने तपस्या की, उसके फल से ये दशरथ और कौशल्या बनकर आए, तो यहां ये अपने रूप में आ गए। तो यहां इनका मुख्य प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन एक अवतार से कई काम करना है। इनको दशरथ जी को और कौशल्या जी को भी खुश कर दिया, और अब ये जाएंगे तो बड़े बड़े दुष्टों का संहार करेंगे, खाली हाथ थोड़ी आएंगे। तो फिर ये 14 वर्ष के बनवास तो गए बिना तो काम होगा नहीं ना, तो ये बनवास क्यों हुआ? ये बनवास इन्हीं की प्रेरणा से हुआ है, नहीं तो इनको कोई हिला दे, ये त्रिलोकी के स्वामी है, ये सब इनकी लीला हो रही है। और वे ही रावण का वध करने के लिए देवताओं ने कितनी बार इनसे प्रार्थना की है, उस देवताओं की प्रार्थना को हृदय में रखकर ये उनका हित करने के लिए यहां आए हैं। और ये सीता है, इनकी माया है, यही संसार को उत्पन्न करने वाली और जो है संहार करने वाली है। राजा वा कैकेयी, ये राजा है, ये कैकेयी, इनका विचारों का क्या लेना देना है? एक बात और बता दूं, कल यहां नारद जी आए थे, नारद जी ने भी आकर के राम जी को कहा कि राम जी आपके अभिषेक की तैयारी हो रही है, और आपको तो वहां जाना है दंडकारण्य में, आप अभिषेक की तैयारी में क्यों लगे, क्यों क्यों हो रही है यहां? राम जी ने कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। तो राम जी ने उनको कहा कि शोक अभिश्याम में हम वनम, मैं वन में जाऊंगा। इसलिए भाई आप लोग तो ये लीला देखते रहो, किसी को अच्छा बुरा मत बताओ, अपने तो लीला देखो और खुश रहो, और हरदम राम राम का जाप करो। राम रामेति ये नित्यम जपन्ति मनुजास भुवि, तेषां मृत्यु भयादीनी न भवन्ति कदाचन। जो हरदम राम 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 करते रहते हैं, उनको कभी भी मृत्यु आदि का भय नहीं लगता। कल मरे तो आज मरो, आज मरे तो अभी मरो, मरो ना, क्या फर्क पड़ता है? अपने को डर लगता है, डर क्यों लगता है भाई? कोई ना कोई कसूर करते हैं तो डर लगता है। अब यदि कोई आदमी चोरी करके यहां बैठ जाए और पुलिस वाला खड़ा हो जाए ना, तो अपने तो अच्छा ही मानेंगे, ठीक है भाई गेट पर खड़ा है, अपनी रक्षा में खड़ा है, लेकिन जो चोर है ना, उसके हृदय की बात देखो कैसी गुदगुदी होती है उसके मन में, रे पुलिस वाला आ गया। वो जो है शक पकाएगा और अपने शक पकाहट को छिपाएगा भी, उसके भाव छिपे हुए नहीं रहेंगे, पुलिस वाला पकड़ लेंगे उसको, कि भाई तेरे अंदर भय नहीं, निर्भयता तेरे अंदर नहीं दिख रही है, तू डरपोक है, इसका मतलब तूने नरकाला काम किया है, पकड़ लेंगे। ऐसे ही जो मृत्यु से डरते हैं, इसका अर्थ हम कसूरदार होकर बैठे हैं यहां संसार में। भगवान को भूलने के समान कोई कसूर नहीं है, सबसे बड़ा कसूर, सबसे बड़ा अपराध भगवान को भूलना। और याद करने का तरीका कि भगवान का नाम जप, भगवान का नाम जप है, ये भगवान को याद करने का तरीका है। इसलिए आप भगवान की लीलाओं को तो देखते रहो और नाम का जप करते रहो। इस वनवास से राम को कोई दुख होगा, ये तो तुम्हें अपने मन से शंका ही मिटा देनी चाहिए। अरे राम नाम जप करने वाले के दुख नहीं होता, तो राम के कहां दुख होगा? माया मनुष्य रूपेण, ये तो माया से मनुष्य बने हुए हैं और लोगों को भगवान के भजन में लगाने के लिए तो लीला कर रहे हैं, और रावण आदि का वध करना है, एक लीला में कई काम करने वाले हैं। इतना कहकर वामदेव जी चुप हो गए। तब वे सोचने लगे कि ओहो श्रुत्वाते भी द्विजा सर्वे रामम ज्ञात्वा हरिम विमुह जहूर हृत संशय ग्रंथिम रामे वान्व चिंतयन। राम का चिंतन करेगा, ओहो राम तो इतने महान है। तब उन वामदेव जी ने कहा कि देखो हमने जो ये बात कही है ना, ये बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, और अपने घरों में जाओ और इस भक्ति के अंदर डूबे रहो। इधर तो वामदेव जी ने लोगों को ये समझा दिया, इधर राम जी महाराज अपने पिता के घर में गए, पिताजी को जाकर प्रणाम किया, और प्रणाम करके और सीता जी ने भी प्रणाम किया, कैकेयी माता को भी प्रणाम किया। राम जी ने कैकेयी से कहा, माता हम तीनों वन में जाएंगे, तुमने मेरे को एक के लिए कहा, हम तीनों वन में जाएंगे, मैंने तो मना किया है, लक्ष्मण भी नहीं मानते, सीता भी नहीं मानती, अब आप आज्ञा दो, आज्ञा दिलवाओ महाराज से, आज्ञा दिलवाओ। हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ भी तो कोई चाहिए ना, इसलिए तुम ये वस्त्र पहन लो। अब वो तीनों को वस्त्र पहनाया गया। अब राम जी तो फटाफट अपने वस्त्र पहन लिए भाई, राम जी ने पहन लिए, लक्ष्मण जी ने भी पहने, सीता जी कभी पहनी हुई नहीं कि कैसे पहनूं। तो राम जी ने क्या किया, वो कपड़ा था, वो कपड़ा ही उसके ऊपर लपेट दिया, लपेट गया, ये तुम्हारा वस्त्र हो गया। ये सब देख करके सब जो उपस्थित थे रोने लगे, वशिष्ठ जी से नहीं रहा गया, वशिष्ठ जी नाराज हो गए। नाराज होकर के कहने लगे, कैकेयी दुष्टे, तूने राम को वस्त्र के लिए वरदान मांगा है, लक्ष्मण तुमने सीता के लिए थोड़ा ही मांगा है। यदि रामम समन्वेति, सीता यदि पतिव्रता स्त्री होने के नाते धर्म की स्थापना के लिए, पातिव्रत्य धर्म की रक्षा के लिए यदि वन में जाती है, तो ऐसे कपड़े तुमको सीता के लिए देने के लिए कहां कहा है, हमें हमारी आज्ञा है सीता सर्वावरण भूषित होकर के जाएगी, तपस्विनी वेश से नहीं जाएगी। सब चुप हो गए। दशरथ जी ने कहा, सुमंत रथ लाओ और उस रथ के अंदर बैठाओ, और मुझे भी इनके साथ रथ में बैठा करके वन में ले जाओ। सीता जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राम जी ने भी प्रणाम करके खूब सजा, पिताजी आप वन में जाते अच्छे नहीं लगेंगे, यदि आप वन में जाएंगे तो उस समय दुनिया क्या कहेगी, और लोग यही कहेंगे कि राम जी के साथ वन में इसलिए गए कि उनको अपने सत्य पालन में बहुत बड़ी भारी कठिनाई हुई, सत्य पालन में जो कठिनाई का अनुभव करता है वो व्यक्ति सत्य का पालन नहीं कर पाता, इसलिए पिताजी आप मोह को छोड़िए और आप अयोध्या ही रहिए, आप मेरे साथ मत चलिए पिताजी, अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे पिताजी को जैसे तैसे उन्होंने सांत्वना दी, और लक्ष्मण जी ने धनुष है, तलवार है, और कोई सामग्रियां ये सब साथ में ले ली, कोई कोई तो कहते हैं फावड़ा गेंती भी ली इन्होंने, फावड़ा गेंती इसलिए ली जगह को साफ सुथरा करना हो, एकदम कहां जगह मिले इसलिए ऐसा भी किया, कहते हैं कि वह फावड़ा और गेंती ये सामान इसलिए लिया कि कहीं बनावटी गुफा में बैठ जाए तो राक्षसों को पता भी न चले, ऐसी ऐसी सामग्री साथ में ली, कई प्रकार की सामग्री ली उन्होंने, और रथ में बैठ करके रवाना हो गए। दशरथ जी कहने लगे, सुमंत थोड़ा ठहरो तो सही, सुमंत ठहरो, देखो सुमंत जी कह, राम जी कहते हैं कि सुमंत जी ठहरना नहीं, पिता तो स्नेह में बोलते हैं, और यदि स्नेह में आकर यदि वो आज्ञा दे देंगे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ तो उन्होंने दो वचन दिए हैं, एक तरफ मुझे कहेंगे कि राम मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए तुम चलो। तो गच्छ गच्छे थी रामेण, राम जी ने कहा चलो चलो, पिताजी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे सुमन जी क्या करे, चले चले, राम जी ने कहा चलो चलो सुमन जी चलो, यही तो वेला है परीक्षा की, यही घड़ी है चलो। राम जी महाराज का रथ जब बड़ी तेजी से दूर चला गया तो सब जो है दशरथ जी महाराज सब जो है मूर्छित हो गए, और इधर अयोध्या का झुंड पीछे गया, बहुत दूर तक चला गया, राम जी के साथ ही हो गया। आप दशरथ जी महाराज को थोड़ा होश आया तो कहा कि मैं कैकेयी के घर नहीं रहूंगा, मैं कौशल्या के घर जाऊंगा। कौशल्या तुम मुझे अपने महल में ले चलो, अपने महल में ले चलो। किंचित कालम भवेत तत्र जीवनम दुखितस्य मे, अतः उर्ध्वम न जीवामि चिरम रामम बिना कृत है। कौशल्ये ज्यादा दिन अब मैं नहीं जीव पाऊंगा, और अब तो राम के बिना मेरा जीवन यूं ही जाने वाला है। इस प्रकार से कौशल्या जी के घर में राम भी आ गए दशरथ जी, और वहां आकर के वो मूर्छित होकर गिर गए। इधर राम जी महाराज तमसा नदी के किनारे आए, कोई भोजन वगैरह नहीं किया, जितने अयोध्यावासी थे कोई टिप्पणी पन लेके रवाना नहीं हुए थे, वो सब ऐसे ही रवाना हुए थे, सब निराहार। तो भगवान ने कहा कि भाई अपने भी निराहार रहेंगे, सब वहां पर बैठे इतनी दूर चले, थक गए। तब सबको गहरी नींद आ गई, गहरी नींद में राम जी जगे। राम जी ने जग करके सुमंत जी से कहा, सुमंत जी ये पूर्वासी हमारे साथ, अब इनको विदा करें तो बेचारे दुखी हो जाएंगे, और इनको साथ में ले चले तो संभव नहीं है। ये अभी अभी तो जोश में कहते हैं हम चलेंगे, ये वो, ये जोश ठंडा हो जाएगा वनवास में, एक दिन चलेंगे। देखो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, वो शुरू करते हैं तब तो बड़ा जोश रहता है, और जब चलते 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 अंत में जब दो एक दिन रहते हैं ना अनुष्ठान के, तब जो है वो ढिलाई बहुत आ जाती है। तो ये अभी तो खूब जोर शोर से चलने की बात कहते हैं, फिर कोई थकेगा कोई क्या हो जाएगा, इनके साथ अपना चलना भी ठीक नहीं है। आप तो अब रवाना हो जाए और इस ढंग से चलाए रथ को कि इस मार्ग से जाए तो अयोध्या ही पहुंचे, फिर अयोध्या के पास से ऐसे मार्ग से जाए कि अपन वन में जाए तो इनको पता ही न चले कि किधर से निकल गए। वो अयोध्या के आए, अयोध्या में आ गए, फिर न जाने अयोध्या के पास से किधर से किधर किधर के किधर निकल गए। इदानी में वह गच्छा मैं सुमंत्र रथ महानय, इतना कहकर के भगवान तो चले गए। और आगे जाकर भगवान दूसरा मार्ग ले लिए, और वे लोग सुबह उठे, कह रहे ऐसी नींद, नींद तो हमने बहुत बार ली, सदा नींद से सुख मिला, लेकिन आज ऐसा नींद का धोखा हमको हुआ, ऐसा धोखा पहले कभी नहीं हुआ, अब क्या करें। उस मार्ग से चलते चलते वापस अयोध्या आ गए। अब अयोध्या में आए तो विचार किया क्या करना चाहिए, हमें तो राम जी का सानिध्य प्राप्त करना है। तब वहां पर अच्छे अच्छे संत महापुरुष थे, उनका करे सुनो सुनो अयोध्या वासियों सुनो, राम जी का सानिध्य चाहते हो कि हाँ, तो राम जी के पास रहोगे वो सानिध्य नहीं होता है। पास यदि तुम राम जी के बाद चले गए और घर की याद आई तो राम जी के पास रहे कि राम जी से दूर रहे, बताओ कि तब तो राम जी से दूर हो जाएगी। यदि आप राम का सानिध्य चाहते हो तो आप राम का ध्यान करते हुए घर में रहो, आप राम के पास ही हो, अपने हृदय में राम को बसाकर उसका ध्यान करोगे तो कहां आप राम से दूर हो। ओह ये बात बड़ी अच्छी कही। और यदि राम के साथ गए और वहां जाकर के और तुमने घर की याद की तो अच्छा थोड़ी लगेगा, यहीं बैठे रहो यहीं ध्यान करो। लोग कहते हैं हमको पहले भगवान दिखियावे तो फिर हम भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें, भगवान की तरफ चले, हमारी साधना में भी कुछ तीव्रता है। भगवान तो मिलते तो है नहीं, अरे भगवान नहीं मिलते अच्छा है ये। यदि पहले भगवान मिल जाए और फिर भी अभी हम संसार का काम धंधे में लगे रहे तो हमारी क्या दशा होगी, अपराध लगेगा। अभी तो इतनी गलती है कि हमने भगवान का भजन नहीं किया, और फिर अपराध बनेगा कि देखो भगवान ने दर्शन भी दे दिए और फिर भी भगवान को भूल गए, ये अपराध बनेगा। अभी तो एक गलती और फिर बनेगा अपराध। गलती तो माफ होती है, अपराध कभी भी माफ नहीं होता है, इसलिए भगवान पहले नहीं मिले तो बड़ा अच्छा है। इधर भगवान वहां से रवाना हुए और श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे, गंगा जी को प्रणाम किया और निषाद राज वहां मिले। निषाद राज ने बड़े प्रेम से राम जी का स्वागत किया, अनेक प्रकार के पुष्प फल आदि रखे। और उसके बाद निषाद राज ने कहा कि महाराज मैं तो धन्य हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई, अभी आप जो है हमारे घर पधारो। भगवान ने कहा कि देखिए हम किसी के घर नहीं जा सकते, 14 वर्ष तक का हमारा यही नियम रहेगा। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद तो हम लोग किसी का दिया हुआ फल भी नहीं ले सकते, आपका दिया हुआ फल हम नहीं ले सकते, हम तो हमारे ही द्वारा लिया हुआ फल लेंगे। दत्तम अन्य ने नो भुंजे, दूसरे का फल हम नहीं खा सकते। और तुमने कहा कि राज्य है, राज्य ठीक है हमारा है, ये राज्य हमारा है, तुम संभालो। क्या देखो इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि अपना घर निषाद राज की तरह से भगवान को दे दोगे, भगवान परिवार भी आपका, घर भी आपका, संपत्ति आपकी, हम भी आपके, सब आपके हैं, तो भगवान का घर है ऐसा समझ करके उसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान का घर है। इस प्रकार से भगवान वहां रहे, प्रातःकाल हुआ, बटका दूध मंगा करके भगवान ने जटाएं बनाई। अब देखो ऋषि मुनियों का जीवन तो ऐसा ही होता है, बटके दूध से क्या होता है, ये बाल है, ये सब बाल यूं 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 हो जाते हैं, इन बालों के अंदर जुए नहीं पड़ती। तो आप देखते होंगे कई महात्माओं के इतने इतने बाल होते हैं, और जो जुए पड़ जाए और भी कोई लग जाए, क्या बालों में भी कई बीमारियां हो जाए, पर बटका दूध मंगा करके करते हैं तो उससे ये सब बाल खराब नहीं होते हैं। तो बटका दूध लेकर के उन्होंने जटा बनाई और उस दिन केवल जल पिए और फिर जो है बड़े आनंद के साथ में वहां पर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद प्रातःकाल हुआ तो निषाद राज की और लक्ष्मण जी की आपस में बातें हुई। निषाद राज ने कहा कि देखो लक्ष्मण, प्रातःकाल हुआ नहीं, अभी रात्रि का ही समय है, विश्राम कर रहे हैं ना। तो लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, ये राम कितने स्वर्णिम पलंगों पर विश्राम करने वाले, ये सीता कैसे ऊंचे राजघराने में पैदा हुई और कैसे ऊंचे राजघराने में ये आई, और ये देखो आज सीता जी घास फूस पर सो रही है, राम जी है ये जो है ये घास फूस के पत्तों पर सो रहे हैं, क्या है देखो, एक केकई नहीं होती तो कितना अच्छा होता, केकई के कारण से ही बेचारे दुख पा रहे हैं, और उस मंथरा की बुद्धि का सहारा लेने से केकई ने पाप का आचरण किया और उसका फल देखो राम जी को, सीता जी को और आप लोगों को भोगना पड़ता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, मित्र मेरी बात को सुनो, संसार में कोई किसी को न तो सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति ति कुबुद्धि रेषा, अहम करोमि ति वृथाभिमान है, स्वकर्म सूत्रक गथितो ही लोके, सब अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं, उसमें निमित्त कभी कोई मर जाता है कभी कोई मर जाता है, सुहृद मित्र उदासीन द्वेष्य मध्यस्थ भाई बंधु, ये सब अपने कर्मों के अनुसार ही लोगों को मिलते हैं और अपने कर्मों के अनुसार इनसे वियोग भी होता है। ऐसा विचार करके मैंने तो ये समझ लिया है कि संसार में किसी भोगों की कोई इच्छा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाग्य में लिखा होगा तो वो हमको ही मिलेगा। जैसे बुखार है, कोई इच्छा नहीं करते हैं तो बुखार आता है कि नहीं, बीमारी आती है कि नहीं, कोई इच्छा नहीं करता, कोई अनुष्ठान भी नहीं करते, कोई भी नहीं चाहता कि हमको दुख मिले, लेकिन दुख आता है, तो फिर सुख की बिना चाहे जब दुख आता है तो बिना चाहे सुख भी आ जाएगा। इसलिए कभी हम तो कोई किसी भोग की किसी की कोई इच्छा ही नहीं करते। हम जानते हैं यस्मिन देशे, जिस देश में, जिस काल में, जिसके द्वारा जब कभी जो कुछ हमको मिलने वाला है वो मिलेगा, नहीं मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। कृतम शुभा शुभम कर्म भोज्यम तत्र न अन्यथा, जो हमको मिलेगा तो वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए हर शोक करने की क्या जरूरत है। इसलिए सर्वदा सुख दुखाभ्याम नरह प्रत्यवरुध्यते, इसलिए मनुष्य सुख और दुख से सदा ही चारों तरफ से घिरा ही रहता है, इससे ऊपर उठना हो तो उसको कम से कम भाग्य के ऊपर तो विचार करना चाहिए। कैसा ये मनुष्य, न तो भाग्य पर विश्वास, न भगवान पर विश्वास, न अपने विवेक पर विश्वास, कहीं पर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है। अरे सुख दुख है क्या? सुखस्य अनंतरम दुखम, सुख के बाद दुख है और दुखस्य अनंतरम सुखम, और दुख के बाद सुख है। ऐसा संसार में कोई सुख नहीं है कि जिससे पहले दुख न उठाना पड़े, और ऐसा कोई संसार में सुख नहीं है कि जिसके बाद दुख न उठाना पड़े। संसार के सुख से पहले दुख है और संसार के सुख के बाद दुख है, दोनों साथ साथ रहते हैं अलंग्यम दिन रात्रिवत। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख के बीच में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे जल के अंदर कमल रहता है, कमल पर जल का प्रभाव नहीं रहता, निर्विकार, और कमल हरदम खिला रहता है। ऐसे सुख और दुख में हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे करते करते उनकी रात बीती, प्रातःकाल हुआ, नौका ली, नौका के अंदर विराजमान हो गए। राम जी महाराज ने पहले सीता जी को उस नौका के अंदर विराजमान किया, फिर निषाद राज ने जो है राम जी को, राम जी ने निषाद राज का सहारा लिया और वे नौका में विराजमान हो गए। फिर लक्ष्मण जी बैठ गए और फिर निषाद राज ने वहां नौका चलाई। नौका चलाई तो गंगा जी के बीच में आने पर बहुत गंगा जी की स्तुति गाई हमारी सीता माता ने, कहा देवी गंगे नमस्तुभ्यम निवृत्ता वनवासतः। हम यदि तीनों के तीनों सकुशल वापिस आ जाते हैं तो हे गंगा जी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और आपकी फिर पूजा भी करेंगे, आपके लिए एक अलग से अनेक प्रकार की पूजा करेंगे, अभी तो हम कर नहीं सकते हैं, इस प्रकार से कहा। फिर जो है तीर पर आ गए। तट पर आने के बाद भगवान से निषाद राज ने कहा कि महाराज मैं तो आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं, देखो 14 वर्ष का वनवास हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप अपने घर पर जाइए और हम हमारे वनवास का काम हम पूरा करते हैं। इस प्रकार से निषाद राज को जैसे तैसे लौटा दिया और उसके बाद भगवान वहां से आगे का प्रस्थान करते हैं।